पृष्ठ संख्या 40। ऐसे ग्रंथों की सूची भी पुस्तक के अंत में दी गई है। इसी विशेषता के कारण संभवतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके विषय में कहा था, शिक्षोपयोगी तीन पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की हैं। ब्रैकेट में हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 622 ब्रैकेट क्लोज। ऐसी स्थिति में इस रचना का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा पहली बार हिंदी समालोचना को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में गंभीरता से अध्ययन अध्यापन का विषय बनाकर प्रतिष्ठित किया गया। साहित्यालोचन की रचना से बाबू साहब ने उस पूर्ण आलोचना शास्त्र की नींव डाली जो पूर्व और पश्चिम भेद से मुक्त शास्त्र मात्र होता है। संपूर्ण ग्रंथ के परिच्छेदों का क्रम, विषय का विभाग आदि अपने मन में बनाकर उसकी रचना आरंभ की गई। अतः लेखक के अनुसार मौलिकता ग्रंथ की योजना में है, किंतु ग्रंथ के क्रम, विभाग, अध्यायों के शीर्षक आदि पर भी हडसन का गहरा प्रभाव है। बाबू साहब ने पाश्चात्य कला विवेचन का अनुसरण करते हुए साहित्य का स्थान ललित कलाओं के बीच निर्धारित किया। साहित्य की विविध प्राचीन एवं नवीन विधाओं का विवेचन किया। ऐसा करते हुए उन्होंने परंपरागत और नवागत दोनों पद्धतियों को मान्यता दी। उन्होंने रस और अलंकार जैसे परंपरा अनुमोदित विषय का भी विवेचन किया और उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि नवीन विधाओं का भी। नाटक पर उन्होंने अलग से रूपक रहस्य की रचना की। उन्होंने परिशिष्ट में और बातों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य शास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्दों की सूची भी दी है। उनका यह प्रयत्न वास्तव में हिंदी के आलोचना शास्त्र को स्वतंत्र रूप में विकसित करने का प्रयत्न ही कहा जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाबू साहब ने हिंदी भाषा और साहित्य नाम से साहित्य का इतिहास भी लिखा। बाद में इतिहास वाले अंश का प्रकाशन स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हुआ। इसके प्रकाशन से एक वर्ष पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हो चुका था। शुक्ल जी के इतिहास के समकक्ष न तो इस पुस्तक में आलोचनात्मक विश्लेषण है और न मिश्र बंधु विनोद के समान साहित्यकारों के विषय में पर्याप्त सूचनाएं हैं। फिर भी इस इतिहास की विशेषता इस बात में है कि इसमें साहित्य को भाषा और ललित कलाओं के विकास के व्यापक संदर्भ में रखकर देखा गया है। उनके दृष्टिकोण की व्यापकता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने पश्चिम की समीक्षा पद्धति में चर्चित फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत, कला के लिए कला, यथार्थवाद आदि का संक्षिप्त परिचय ही नहीं दिया, अपनी समझ से उनकी ग्राह्यता अग्राह्यता पर भी विचार किया है। साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन को उन्होंने सांस्कृतिक आयाम भी दिया।